हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सुनैना जब घर पहुँची तो आदित्य शायद घर वापस आ चुका था। उसने घर के बाहर खड़ी आदित्य की कार देख ली थी। आदित्य ज्यादातर वही कार इस्तेमाल करता था, लेकिन सुनैना ने फैसला किया था कि वो आज आदित्य से कुछ नहीं पूछेगी और न ही उससे कोई बात करने की कोशिश करेगी। जैसे उसने कल रात से लेकर आज सुबह तक किया था, वैसे ही वो अभी भी आदित्य को अनदेखा करेगी। मन में इतना कुछ चलने की वजह से सुनैना के लिए ऐसा करना मुश्किल होने वाला था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इसके लिए तैयार कर रही थी। ये सब सोचते हुए वो सीधा सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई। लेकिन वो कमरे के दरवाजे के पास पहुंची तो कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से आदित्य के साथ किसी से बात करने की आवाज आ रही थी। ये सुनकर सुनैना सोचने लगी कि आखिर कौन होगा इस वक्त यहाँ पर। घर में गीता को तो वो नीचे ही देखकर आई थी, तो गीता तो नहीं हो सकती। फिर सुनैना ने थोड़ा ध्यान लगाकर दरवाजे के बाहर ही रुककर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश की। अंदर से दो आदमियों के बोलने की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर सुनैना ने अंदाजा लगाया कि शायद वो रवि था जो आदित्य से बात कर रहा था। बात क्या, शायद रवि उसे कुछ समझाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या ये सुनैना को समझ नहीं आया। तो वो वहीं चुपचाप खड़ी होकर अंदर हो रही बातें सुनने लगी। सर, आप मैडम को बता क्यों नहीं देते अपने बारे में, और आखिर आपने उनसे शादी क्यों की है? रवि आदित्य से बोल रहा था। बता तो दिया है क्या रवि, तुम ही तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे और उसने साइन भी कर दिए हैं। आदित्य ने दरवाजे के बाहर खड़ी सुनैना की परछाई देख ली थी, तो वो सारी बातें छुपाता हुआ रवि से बोला। लेकिन सर, वो कॉन्ट्रैक्ट तो, रवि आगे पूरी बात बोलने ही जा रहा था कि आदित्य ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा और खुद बात बदलता हुआ बोल पड़ा। वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने बता दिया है, और सुनैना को भी इस शादी से कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। उसने तो वैसे भी अपनी फैमिली प्रेशर में आकर ये शादी की है, और मेरा भी काम हो गया है। अब तो हमारा जो कुछ भी है, जैसे चल रहा है, मैं वैसे ही चलने दूंगा। आखिर मैं भी इसमें खुश हूँ और वो भी। आदित्य ने जानबूझकर ये बात थोड़ी सी तेज आवाज में सुनैना को सुनाने के लिए बोली, और सुनैना ने ये बात सुन भी ली, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि आदित्य ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने सुनैना को वहाँ दरवाजे पर खड़े हुए देख लिया था। ओके सर, जैसा आपको ठीक लगे, रवि आदित्य की बात सुनकर सिर्फ इतना ही बोला, क्योंकि अब तक उसने भी सुनैना की परछाई दरवाजे से अंदर नजर आती हुई देख ली थी। लेकिन सुनैना आदित्य की ये बात सुनकर काफी ज्यादा क्लेश में आ गई। खुश? आखिर इन सब में खुशी कहाँ पर थी? कौन खुश था? आखिर उन दोनों में से सुनैना को तो कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। तो आखिर किस तरह की खुशियों की बात आदित्य कर रहा था? क्या कहा तुमने, खुश? कौन खुश? कौन है यहाँ पर? मैं, जो हर वक्त सोचती रहती हूँ कि मेरे आसपास के लोग ज्यादा खराब हैं या मेरी अपनी किस्मत, या फिर तुम, जो पता नहीं क्यों दिन रात नशे में ही डूबे रहते हो। वैसे मुझे पता नहीं, शायद वो तुम ज्यादा खुश होने पर ही ड्रिंक करते हो। बताया नहीं ना कभी तुमने, और तुम्हारी शक्ल देखकर तो पता भी नहीं चल पाता कभी मुझे। आदित्य की ऐसी बात और उस पर रवि का एकदम सीधा सा जवाब सुनकर सुनैना से रहा नहीं गया, और वो एकदम से कमरे के अंदर आती हुई गुस्से में आदित्य की तरफ देखकर ये बात बोली, जो बात कम और सवाल ज्यादा था। सुनैना के इस सवाल पर आदित्य हल्का सा मुस्कुराया और अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए सुनैना की तरफ से मुंह फेरकर दूसरी तरफ देखते हुए खड़ा हो गया। गुड इवनिंग मैम, रवि ने सुनैना को अंदर आकर ये सवाल करते देखा तो उसने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे औपचारिक रूप से अभिवादन करते हुए बोला, गुड क्या है इस इवनिंग में? आदित्य ने सुनैना की इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया, तो उसी की निराशा सुनैना रवि पर निकालती हुई बोली, और रवि सुनैना की इस बात पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे प्रतिक्रिया करे। इसलिए वो आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए यहाँ से। हाँ ठीक है रवि, तुम जाओ, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। रवि के इस तरह से बोलने पर आदित्य ने भी जैसे उसे इजाज़त देते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर रवि जल्दी से वहाँ से चला गया, क्योंकि उन दोनों पति पत्नी के बीच की लड़ाई में वो वहाँ पर और रुकना नहीं चाहता था। और सुनैना अपने दोनों हाथ बांधकर गुस्से में आदित्य और जाते हुए रवि को भी देख रही थी। क्या खुश हो, बताओ बताओ ना, खुश हो, नजर आता है तो, मैं यहाँ पर, मैं दिखाई दे रही हूँ क्या तुम्हें, खुश? रवि के जाते ही सुनैना फिर से आदित्य के सामने आकर खड़ी होती हुई उसकी तरफ देखकर उससे पूछती है। उसके इस तरह से गुस्सा करने पर वो आदित्य को इस वक्त बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है और आदित्य का मन करता है कि उसे अभी के अभी अपने एकदम करीब करके अपनी बाहों में भर ले। और ऐसा सोचते हुए वो एकदम प्यार भरी नजरों से सुनैना की तरफ ही देखने लगता है, लेकिन ऐसा करने से खुद को रोक लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तो तुमने खुश रहने के लिए मुझे ये शादी की थी क्या? तुम बार बार एक बात ही क्यों करते रहते हो और जो हो गया उसे वहीं क्यों नहीं छोड़ते? जो अभी आगे है और सामने, उसके बारे में कुछ क्यों नहीं सोचते? आदित्य के इस सवाल पर सुनैना थोड़ा सा शर्माती हुई बोली, सामने? हाँ, मेरे सामने तो तुम हो। सुनैना की ये बात सुनकर आदित्य काफी शरारत भरी नजरों से उसकी तरफ देखकर आगे बढ़ता हुआ बोला। उसने ये बात जानबूझकर सुनैना को चिढ़ाने के लिए बोली थी, लेकिन सुनैना उसकी उम्मीद से उलट शर्माने या चिढ़ने के बजाय काफी हसरत भरी निगाहों से आदित्य की आंखों में ही देखने लगी और फिर बोली, हाँ चलो खैर, तुमने नोटिस तो किया मुझे। और सुनैना को अपनी तरफ इस तरह देखता हुआ पाकर आदित्य का तो जैसे गला ही सूख गया। और वो पहले से ही सुनैना से प्यार करता था, इसलिए उसके इतना नजदीक होने पर उसका सुनैना के और करीब जाने का मन करता था, उसे गले लगाने का, उसे चूमने का और उसे प्यार करने का मन करता था, इसीलिए वो ज्यादातर उससे दूरी बनाकर रखता था। लेकिन अभी इस वक्त सुनैना के इतना नजदीक होने की वजह से वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था और उसने आगे बढ़कर सुनैना को उसकी कमर से पकड़कर उसके करीब कर लिया और अपना चेहरा उसके चेहरे के सामने एकदम नजदीक करते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नोटिस नहीं करता? वैसे अभी अभी क्या लग रहा है तुम्हें? सुनैना के चेहरे के सामने अपना चेहरा किए हुए आदित्य उसकी तरफ देखकर ये सब बोल रहा था तो आदित्य की गर्म सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थीं और आदित्य की सांसें उसके चेहरे से टकराते ही सुनैना की आंखें कुछ पलों के लिए बंद हो गईं और अब वो आदित्य के लफ्जों को सुनने से ज्यादा महसूस कर रही थी। सुनैना के इस तरह से आंखें बंद करने को उसकी मंजूरी समझते हुए आदित्य भी आगे बढ़ा और उसने सुनैना के नाजुक गुलाबी लबों पर अपने होंठ रख दिए और पूरी शिद्दत के साथ उसे चूमने लगा। उसके दोनों हाथ इस वक्त सुनैना की पतली नाजुक कमर के चारों तरफ इस तरह से लिपटे हुए थे जैसे कि चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटा होता है और वो बिल्कुल भी सुनैना को छोड़ने वाला नहीं था। सुनैना के इस तरह अचानक से चूमने पर पहले तो थोड़ी सी हैरान हुई, लेकिन फिर उसे पिछली बार की ही तरह आदित्य का इस तरह चूमना बहुत ही मोहब्बत भरा और सुकून देने वाला लग रहा था, तो वो भी आदित्य का साथ देते हुए उसे चूमने लगी। और सुनैना का हाथ इस वक्त आदित्य के गर्दन पर था और वो उसके गर्दन पर अपने नाखून फेर रही थी, लेकिन आदित्य पर इतना प्यार छाया हुआ था कि उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था और न ही सुनैना के नाखूनों से कोई फर्क पड़ रहा था।
आदित्य और सुनैना काफी देर तक एक दूसरे को चूमते रहे, तभी उन दोनों को ही सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो आदित्य सुनैना से दूर हुआ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसने सिर्फ सुनैना के लबों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया और अब उसके लब सुनैना के चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन पर घूमने लगे थे और सुनैना की पकड़ आदित्य के कंधे और गर्दन पर और ज्यादा कसती जा रही थी। आदित्य की इस तरह की नज़दीकी से सुनैना हमेशा की तरह अपने होश खोती जा रही थी और वो आदित्य को न रोकना चाहती थी और न ही खुद से दूर करना। वो बस पूरी तरह से इस लम्हे में खो जाना चाहती थी और इस वक्त को खुलकर महसूस करते हुए आदित्य के साथ जी लेना चाहती थी क्रमशः।